चैप्टर 18। वही रुद्र उस लड़की को अपने गोद में बैठता हुआ देख और वाइन अपने होठों से लगाता हुआ देख गुस्से से उस लड़की को धक्का दे देता है। रुद्र के धक्का देते ही वे लड़की खुद को संभाल लेती है और दोबारा रुद्र के पास जा रुद्र के सीने पर अपनी उंगलियां चलाते हुए रुद्र को सेड्यूस करते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, एक बार मुझे मौका तो दीजिए। यकीन मानिए मेरा, मैं आपको निराश होने का कोई मौका नहीं दूंगी। इतना बोल वे सबके सामने रुद्र के होठों की ओर बढ़ने लगती है, मगर वे रुद्र के होठों के करीब भी जा पाती तभी उसकी दर्द भरी चीख सबके कानों में सुनाई पड़ती है, क्योंकि रुद्र ने उसके उसी हाथ पर गोली मारी थी जिस हाथ से उस लड़की ने रुद्र को छुआ था। वहीं वे लड़की अपने हाथों को पकड़े जमीन पर दर्द से तड़प रही थी। तभी रुद्र अपनी चेयर से उठा और उस लड़की के उसी हाथ पर अपने पैर रख उसे बेदर्दी से मसलते हुए बोला, आज गलती कर दी, पर दोबारा कभी भी रुद्र सिंघानिया तो छूना तो क्या, उसके करीब आने के पहले भी हजार बार सोच लेना, क्योंकि इस रुद्र सिंघानिया को छूने का, उसके करीब आने का, उसे प्यार करने का, उसके साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ और सिर्फ उसकी इनोसेंट रूह का है, तुम जैसी बाजारू लड़कियों का नहीं। इतना बोल वे उसके हाथ से अपने पैरों को हटा लेता है और बॉडीगार्ड्स को बुलाते हुए कहता है, इस कचरे को उठाकर बाहर फेंको, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। इतना बोल वे किंग की तरह आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वहीं बॉडीगार्ड्स उस लड़की को उठा लेकर चले जाते हैं। अमन ये सब देख मन में ही बोला, ये बॉस ना एक दिन सच में मुझे हार्ट अटैक ही दिलवा देंगे। इतना बोल वे अपने माथे पर पसीने की बूंदें साफ करने लगता है। वहीं रुद्र उन सभी बिजनेसमैन को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोला, तुम सभी को मेरी लास्ट वार्निंग है, जिसे साइन करना है करे और जिसे नहीं साइन करना है वे भी मुझे अच्छे से बताए, क्योंकि मेरे पास सबकी परेशानियों का हल है। इतना बोल वे सभी बिजनेसमैन को अपनी खतरनाक निगाहों से देखने लगता है। वहीं सभी बिजनेसमैन रुद्र की खतरनाक नजरों और अभी जी कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ उसे याद कर जल्दी से साइन कर देते हैं। वहीं साइन होते ही रुद्र के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वे अमन को सभी पेपर लेने को बोल बाहर की ओर चला जाता है। वहीं अमन सभी बिजनेसमैन से साइन किए हुए पेपर जल्दी से ले भागते हुए अपने शैतान बॉस के पीछे पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्केट में रूही और दिशा दोनों मार्केट पहुंच चुके थे। मार्केट में उन दोनों को गोलगप्पे का ठेला भी दिख गया, जिसे देख रूही बोली, दी चलो गोलगप्पे का ठेला उस तरफ है। इतना बोल रूही दिशा का हाथ पकड़ रोड के उस तरफ आ जाती है और गोलगप्पे वाले के ठेले की तरफ जाने लगती है। तभी उसे एक चूड़ी वाला दिख जाता है जो रंग बिरंगी बहुत सारी रंग की चूड़ियां ले जा रहा था, जिसे देख रूही दिशा को देख जल्दी से बोली, दी गोलगप्पे हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे, चलिए ना पहले चूड़ी ले लेते हैं। रूही की पर दिशा कुछ बोलती उसके पहले ही रूही उस चूड़ी वाले के पास जा उसे रोकते हुए बोली, अरे चूड़ी वाले भैया रुक जाइए, मुझे चूड़ी लेनी है। किसी की आवाज सुन वे चूड़ी वाला रुक जाता है। वहीं दिशा भी अब तक रूही के पास पहुंच चुकी थी। वहीं चूड़ी वाला रूही और दिशा को देख मुस्कुराते हुए बोला, जी दीदी बोली आपको कौन सी चूड़ियां चाहिए। इतना बोल वे मुस्कुराते हुए रूही और दिशा को एक के बाद एक चूड़ियां दिखाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इसी रोड पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, उसी के साथ रुद्र और देवांश दोनों की कार आकर इस भीड़ में फंस गई, जिसे देख रुद्र गुस्से में ड्राइवर से बोला, ये किस रोड से लेकर आए हो तुम गाड़ी, यहाँ कितना ट्रैफिक लगा हुआ है, जल्दी इस भीड़ से गाड़ी निकालो, मुझे एक ही काम नहीं है कि मैं इस भीड़ के खत्म होने का इंतजार करूं। वहीं ड्राइवर रुद्र की बात सुनकर डर जाता है और रुद्र को देखते हुए बोला, जी बॉस मैं जल्दी इस भीड़ से गाड़ी निकालने की कोशिश करता हूँ। इतना बोल वे मन ही मन जल्दी से ट्रैफिक खत्म होने का इंतजार करने लगा। वहीं रुद्र जो सीट पर अपना सर टिकाए आंखें बंद किए हुए था, उसकी आंखें अचानक ही खुल जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसने अपनी रूह को देखा है। इस बात का एहसास होते ही रुद्र अपनी आंखें खोल बाहर की ओर देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर का नजारा देखता है वैसे ही उसकी आंखों में खून उतर आता है। वहीं दूसरी तरफ रूही अपने हाथों में चूड़ी वाले से नीली चूड़ियां पहनते हुए बोली, भैया ये जो लाल वाली चूड़ियां है ना वे आप दी को पहना दीजिए। वहीं चूड़ी वाला मुस्कुराते हुए बोला, जी जी मैडम जी। उसने इतना बोला ही था कि एक जोरदार पंच उस चूड़ी वाले के मुंह पर पड़ता है और वे धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर जा गिरता है। वहीं रूही और दिशा ये देख अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें रुद्र की लाल आंखों पर जाती है दोनों डर के एक दूसरे के हाथों को पकड़ लेती हैं। वहीं रुद्र उस चूड़ी वाले के मुंह पर पंच मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूह को चूड़ी पहनाने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। इतना बोल वे फिर से उस चूड़ी वाले को मारने लगता है। वहीं रूही रोते हुए बोली, दी ये साइको इस चूड़ी वाले को क्यों मार रहा है, प्लीज उसे रोको वरना वे उस चूड़ी वाले को मार देगा, दी प्लीज कुछ करो। रूही को रोता हुआ देखकर दिशा उसे शांत कराते हुए बोली, रूही तू शांत हो जा मैं कुछ करती हूँ। इतना बोल वे रुद्र से बोली, देखिए प्लीज उसे मत मारिए, उसकी कोई गलती नहीं है, वे तो बस अपनी चूड़ियां बेच रहा था। लेकिन रुद्र के कानों में तो जैसे दिशा की कोई आवाज ही नहीं पड़ रही थी।
उसकी आंखों के सामने बस इस चूड़ी वाले का रूही को चूड़ी पहनाना ही आ रहा था, जिसे याद कर उसे और गुस्सा आने लगता है और वे और भी बेरहमी से उस चूड़ी वाले को मारने लगता है। अब तक वहाँ काफी भीड़ भी जमा हो चुकी थी, पर कोई भी आगे आ रुद्र को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि रुद्र का ओरा ही ऐसा था जो लोगों को डराने के लिए काफी था। यहाँ तक कि अमन भी अपने चेहरे पर चिंता के भाव लिए रुद्र के शैतानी रूप को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ देवांश, जो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, जब उस तरफ बहुत भीड़ देखता है तो उसकी नजर भी उस तरफ चली जाती है। तभी उसे रुद्र की हल्की झलक दिखाई देती है जो किसी को मार रहा था, जिसे देख देवांश खुद से ही कहता है, क्या ये रुद्र भाई ही थे? पर रुद्र भाई कब से इस तरह बीच सड़क पर लोगों को पागलों की तरह मारने लगे? मुझे जाकर देखना चाहिए कि ये रुद्र भाई ही है या कोई और। इतना बोल वे गाड़ी से उतर उस तरफ चला जाता है, लेकिन वहां पहुंच वे जैसे ही रुद्र को सच में किसी को मारता हुआ देखता है तो भागता हुआ रुद्र के पास जा उसे रोकते हुए बोला, भाई प्लीज रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इसे क्यों मार रहे हैं?
लेकिन रुद्र देवांश की भी कोई बात नहीं सुनता और लगातार उस चूड़ी वाले को मारता रहता है। उस चूड़ी वाले का काफी सारा खून भी अब तक बह गया था।